നമോസ്തുരാമായ സലക്ഷങ്ങളായ ദേവ്യൈക്ഷനകാത്മകായ നമോസ്തുരുദരേന്ദ്രയമാണ്ടിലേവ്യോ നമോസ്തു ചന്ദ്രകാമരുദ്ഗണേഭ്യഃ ഓം നമഃ പരമഹംസാസ് അതിഥി ചരണകമലചിഹ്നമകരണ്ടായോ ഭക്തജന്മാനസ നിവാസായ ശ്രീരാമചന്ദ്രയോ വിശ്വസർഗവിസർഗാദിനവലക്ഷണലക്ഷിതം ശ്രീകൃഷ്ണാക്ഷം പരന്ധാം ജഗദ്ധാം നമാമി തന്നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണുർഗുരുർദേവ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ. ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ വിശ്വ ബ്രഹ്മലീന ധർമ്മ സമ്രാട് സ്വാമി ശ്രീ കർപ്പാത്രിജി മഹാരാജ് ഗംഗാമയ സാക്ഷി ഹര ഹര ശങ്കര ഭഗവാൻ
ഗുരുദേവ ഭഗവാൻ
ശങ്കര ശങ്കരോ ശങ്കര ശങ്കരോ ഭഗവാൻ ശങ്കര ഭല കൂജിതം പിതൃഭ്യം തു പരമാനന്ദ ശിവ ഓർ ശക്തി ആരാധന കീവന സദാ ആനന്ദ ഭാഗ്യശാലി ഹൈ വ്യക്തി ശിവ ശക്തി ആരാധന കല ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥ ദേവി ഭാഗവത സഭി ചർച്ച ഹോജായ हमारे लिए तो एक ही बहुत ऐसा कह के लोग बाकियों को उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन हम ये कहा करते हैं कि अगर एक से ही काम चल सकता था तो भगवान ने अनेक रूप क्यों बनाए, अनेक लीलाएं क्यों की उन्होंने. देवी और सज्जनों, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो दुकानदार एक ही चीज दिखाता है, कई तरह की साड़ियां दिखाती है, कई तरह के सूट, कई तरह के कपड़े दिखाता है. क्यों? इतनों में कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा. इसी तरह मुंडे मुंडे मतर भिन्न, हर व्यक्ति की शक्ल और अकल भिन्न भिन्न होती है, ये ध्यान रखना. इसलिए भगवान ने अनेक रूप बनाए, किसी न किसी में तो मन टिकेगा, और एक में भी मन टिक गया तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हें, और बदलते रहता है. राजा बलि 52 भगवान का भक्त हुआ, उनका पुत्र बाणासुर भगवान शंकर का भक्त हो। क्या ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही तरफ रुचि रखता है? तो पूर्व संस्कार लेके हर व्यक्ति आता है अलग अलग। और ये भी पहले कहा जा चुका है कि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पांच है, तो भगवान ने अवतार भी पांच रूप अपने बनाए हैं। जिस व्यक्ति में जो तत्व ज्यादा होता है उसी के अनुरूप उसकी बुद्धि होती है, क्या उसी तरफ उसका आकर्षण भी होता है। तो आगे आप सुन पाएंगे, पांच ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हो चुकी है, सात शेष हैं, प्रकरण लंबा है, संक्षेप में सुनाया जा सकेगा। भीमा शंकर छठे ज्योतिर्लिंग हैं, भीमा शंकर पूना बॉम्बे और स्थानों से 150 किलोमीटर करीब कर पाते हैं। एक करकटी नाम की दक्षिणी है, अपने बेटे भीम के साथ रह रही है। अनेक दिन व्यतीत हो चुके, एक दिन भीम ने पूछा, मां हमारे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? मेरे पिता कौन है, मेरे नाना कौन है, नानी कौन है, दादा दादी कौन है, पता तो लगना चाहिए ना। मां के नेत्र भरे आए, विधवा है, दुखी हृदय तो जल का भरा हुआ प्याला होता है, जरा सी ठोकर लगे तो छलक जाता है। तो दुखी व्यक्ति का हृदय भी वो भरा हुआ प्याला है, जरा सी बात होती है अश्रुपात होने लगता है। उसने कहा, बेटा तेरे पिता है भीम, तेरे पिता कुंभकर्ण, तेरे नाना नानी है कर्कट और पुष्कशी, मेरा विवाह विराध से हुआ था, कहाँ है? राम ने मार दिया। नाना नानी कहाँ है? ये दोनों गए से सुतीक्ष्ण को खाने के लिए, और सुतीक्ष्ण ने अपने तपोबल से इनको भस्म कर दिया। मैं अकेली यहां रह रही थी, पति को राम ने खा लिया और माता पिता को सुतीक्ष्ण ने, अकेले। अचानक कुंभकर्ण यहां आया है, बलात् मुझे पत्नी बना लिया, उसी से तो हुआ। तो कुंभकर्ण कहाँ है? बोले राम ने उसको ही मार दिया। इसे भीम को भयानक क्रोध आया, मैं अगर अपने पिता का पुत्र हूं तो एक बार देवताओं को मजा चखाऊंगा, इनको पराजित करूंगा, इसके लिए तप करना है। देखो इस बात को दैत्य दानव भी समझते हैं कि बिना तप किए सिद्धि नहीं होती, जप करना ये भी तप ही है ना, कथा सुन रहा ये भी तप है एक तरह, दो तीन घंटे बैठे चुपचाप सुन रहे हैं। इंद्रियों का संयमन जो है वही तप कहलाता है, और वो किसी भी माध्यम से हो जाए वो तप है। अतप्त तनुर नर्तदा मोष्णुते दिवम, जिसने शरीर को तपाया नहीं उसने ईश्वर को पाया नहीं। ईश्वर को प्राप्त करना है तो तपो, यूं तो सारा संसार तप रहा है, कोई कामनी के लिए तप रहा है, कोई पैसों के लिए तप रहा है, कोई बेटों के लिए तप रहा है, सुबह से शाम तक दौड़ ही रहे, काम कर ही रहे, तपा ही तो है ना एक तरह का। मिस्त्रियों को देखो, छत के ऊपर दीवारें उठा रहे हैं, 8 घंटे धूप में तप रहे हैं, घने तप रहे हैं। लेकिन ये तप है अर्थ के लिए, काम के लिए, इसका फल नहीं। वही तप यदि ईश्वर के लिए कर लिया जाए तो जीवन में चमक आ जाएगी तुम्हारी। तप से तेज की वृद्धि होती है। लोहा तो स्वभाव से काला है, लेकिन आग में डाल दिया जाए तो लाल हो जाता है। ईंटा भी सलेटी रंग की है, भट्ठे में डाल दी जाए तो लाल बन के निकलती है ना। इसी तरह से जब तुम ईश्वर के लिए तपोगे तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा तो संचित हो ही जाती है। इंद्रियों का संयमन करने से ऊर्जा संचित होती है। अनेक बार सुना चुके हैं, समय नहीं है। सामान्य रूप से नदी में जल बह रहा है, उससे पावर नहीं होगा, पावर नहीं बन सकता। पानी से अगर पावर पैदा करना है तो पहले बांध बांधो, उसकी धारा को रोको। क्या भाखड़ा नंगल गए तो परिचित थे तो हमें नीचे ले गए, 500 फुट नीचे। उन्होंने बताया कि इतना लोहा लगा है कि सारे हिंदुस्तान की बाउंड्री उस लोहे से हो सकती। पानी को पहले रोका गया, फिर उसको छोड़ा गया ऊपर से। टरबाइन होती है, पंखियां, पानी जब गिरता है ना फोर्स से तो, और उनका चलना पावर पैदा हो जाता है। इसी तरह आपके जीवन में जो शक्ति आ रही है और आप आगे बढ़ रहे हो, उससे ऊर्जा नहीं होगी। परमात्मा हर समय नई शक्ति आपको दे रहा है, लेकिन जितना दे रहा है आप उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। क्या भाई, किसी टंकी में 10 नल लगे हों और पीछे से उसमें पानी आ रहा हो और 10 नल खुले हों, टंकी कब भरेगी भाई? और टोटियां बंद हो जाए, थोड़े समय में टंकी भर जाए। आपके जीवन की टंकी खाली की खाली है। रात्रि में जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, दिन में आप उसको खर्च कर देते हैं। दिन में जो संचित होती है वो रात में खर्च कर देते हैं। खाली के खाली रह गए। तप, इंद्रियों का संयमन करके फिर ईश्वर का चिंतन करो, उससे ऊर्जा एनर्जी और विराट चेतना से जब तुम जुड़ जाओगे। पैसे तो जुड़ा ही हो, लेकिन वृत्ति जब जुड़ जाएगी तो पावर विशेष समझेगी। क्या लंबी कथा है, भीम ने कठिन तप किया 1000 वर्ष, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बर मांगो, अमर बना दो। अमर तो हो नहीं सकता कोई, कोई निमित्त ले ले। मुझे भगवान शंकर ही मारे, पर वो मारेंगे नहीं क्योंकि वो तो समदर्शी है। भगवान विष्णु को वैष्णव भक्त ही मानते हैं, लेकिन शंकर को तीनों मानते हैं, देव दानो मानो। नहीं समझ में आया क्यों बोलिए? समदर्शी। विष्णु राम कृष्ण पक्षपाती हैं, भक्तों को संभालते हैं, बाकी क्यों? शंकर सब के साथ एक सब व्यवहार कर। भगवान शंकर मेरे बल का सामना कोई कर ना सके, अगर मरना है तो शंकर के हाथ से। भरत तो मिल गया, देवता भी मजबूर हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति तप करके उनसे वर मांगता है तो उसका ऋण उतारने के लिए जो मांगते हैं देना पड़ता है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, देवता परेशान हुए, भर पा के मां के पास आया, मां अब मेरी शक्ति देख लेते, बड़ा अत्याचार उसने किया है। सारे देवता मिलकर फिर भगवान विष्णु की शरण गए, उन्होंने कहा शिव के द्वारा ही मारा जाएगा। भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना की, उन्होंने कहा हमारे एक भक्त हैं सुदक्षिण और उनकी पत्नी है राज्यवल्लभा सुदक्षिणा, दोनों मेरे परम भक्त हैं, ये निरंतर मेरे भजन पूजन में लगे रहते हैं, जीवन भी सात्विक, उन पर जब ये हमला करेगा तब मैं मार दूं। उसने सब पर विजय पाने के बाद सुदक्षिण पर भी विजय प्राप्त कर ली है और भेड़िया पैरों में डाल के जेल में बंद कर दिया। सुदक्षिण का नियम था बिना पूजन किए भोजन नहीं करना, एक ना एक नियम लो इसके बाद ही अपने को कुछ लेना। फुर्सत मिली तो दो घंटे का चार घंटे कर लिया, नहीं मिली तो एक दस मिनट भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन स्नान के बाद शिव का पूजन न किया हो, इसमें लिखा हुआ है। तब मां जानकारी रघुकुल नाथा, तब मां जानकारी रघुकुल नाथा, पूज पार थो नाय माता, पूज पार थो नाय माता। गंगा स्नान किया, वहीं आलू के शिव बनाए, पूजन किया। जिस मनुष्य के जीवन में कोई नियम नहीं है वो तो पशु के समान जीवन है उसका, खाना पाखाना सो जाना छुट्टी हो गई। इंसान वही जो किसी ना किसी नियम से बंधा हुआ। एक महिला हमें मिली, बोले बिना पूजन शिव का के भोजन निकल, न का सूतक पातक हो जाए तो भले उतने फिर फैलार करके रहते हैं, अन्न तब मैं ग्रहण करूंगी जो पूजन कर, तो दूध फल फ्रूट कुछ ले लिया। एक नियम जीवन में होना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में चमत्कार दिखे हैं सुनते हैं वो किसी ना किसी नियम से बंधे हुए थे। भगवान राम प्यास लगी, हाथ में जल ले लिया, अभी आज कथा मिलेगी, अब ध्यान आ गया, अरे अभी तो शिवार्चन नहीं किया, जल रख दिया। हनुमंत लाल जी ने कहा जल से क्या होता परो, प्यास लग रही है अब। हाँ बिल्कुल, रामेश्वरम की स्थापना के प्रसंग में बात आती, नियम होना चाहिए। अब राजा का नियम है लेकिन वहां स्नान की व्यवस्था नहीं और कोई विशेष नहीं, सामग्री तो कुछ मिल गई वहां, तो मानसिक गंगा स्नान कर लेते हैं। यह भी एक संकेत है, मान लीजिए कि आप बुखार है जोर का, या आप ट्रेन में हैं प्लेन में हैं, तो मानसिक गंगा स्नान कर लीजिए। मानसिक स्नान करने से भी स्नान ही हो जाता है, हाथ पैर धो लीजिए, अगर कपड़ों में कुछ गंदगी की संभावना है तो बदल लीजिए, और नहीं है कोई बात कर, ये शास्त्र के आगे। सुदक्षिण इसी तरह पूजन करते हैं, किसी ने भीम को बता दिया कि वो एक अनुष्ठान कर रहा है आपको मारने के, मारण मंत्र का प्रयोग करेगा। भीम को भयानक क्रोध आया, उनकी पत्नी भी महल में भगवान शंकर की आराधना कर, तलवार लेके आया, क्या कर रहे हो शिवार्चन, कहाँ है शिव, बनाए थे मिट्टी में, उठाई तलवार मारने के लिए। जो शिव बने थे ना उसमें, जैसे तलवार उठाई चलाने के लिए भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले शंकर
भगवान की,
मैं भीमेश्वर हूं, और उसको मार दिया। फिर तो देवता भी आ गए, सबने प्रार्थना की कि ये स्थान जो है वैसे निंदित है, आप यहां स्थापित हो जाएंगे तो इसकी रौनक बढ़ जाएगी, लोग आएंगे दर्शन करें, कामना भीमेश्वर की स्थापना होगी। हर हर महादेव शंभो,
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे,
हर हर महादेव दापो विश्वनाथ गंगे,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
हर शब्द का अर्थ होता है हरण कर लो, मिटा दो, हर या? भगवान शंकर का पावन नाम हर है। हर का मतलब दुख हर, दारिद्र हर, विपत्ति हर, मूढ़ता हर, जीवन में जितने भी दोष हैं उन सबको हर लो भोलेनाथ, इसलिए आपका नाम रखा गया है हर हर
महादेव।
कैलाश संहिता है शिव पुराण में, संन्यास ले लिया है, दंड पकड़ लिया है, लेकिन वृत्ति अभी शांत नहीं हो रही है, मन अभी अंतर नहीं बैठ रहा। कम से कम 12,000 प्रणों का प्रतिदिन जप करना ही करना है, अनिवार्य, और नहीं तो भ्रष्ट हो जाओ। अगर ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, हम ब्रह्माष्टमी और स्मृत हो गए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। सन्यासी को के लिए कोई नियम नहीं है शास्त्रों में, जिसे दंडक ग्रहण मात्रे न नरो नारायणो भवे, जिसने दंड ले लिया वो नर से नारायण हो गया। लेकिन अब दंड लेने के बाद भी वृत्ति अभी स्थिर नहीं हो रही, संसार का चिंतन चल रहा है, 12,000 तो नाम दे, और ज्यादा हो जाए अच्छी बात नहीं तो वहां विधि होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान है। अब मुक्तेश्वर भगवान शंकर, काशी की महिमा भरी पड़ी है ग्रंथों, जितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, महाभारत है, सब शिव। काशी शिवलोक से आती है, भगवान शंकर त्रिशूल पर लेके आते हैं, स्थापित करते हैं, और फिर भी साथ रहते हैं। अभिमुक्त शब्द का अर्थ होता है भगवान जिससे कभी अलग ना हो वो अविमुक्त कहलाते। काशी में जिसका मन लग गया ये उसका अंतिम जन्म है, गारंटी है। यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि वहां के कीट पतंग पशु पक्षी भी वैकुंठ जाते हैं। औरों की तो बात क्या, आप काशी में पहुंच गए, अब भजन की जरूरत नहीं, गंगा स्नान विश्वनाथ का दर्शन छुट्टी, खूब ऐश करो आराम, मुक्ति तो मिले जानी है। महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, मैरिड है अनमैरिड है, विधवा है पवित्र है अपवित्र है, सती है वेश्या है, कोई भी काशी में मरी सीधे जाए। पुरुषों के लिए भी लिखा, टाइम पास करने के लिए वहां रह के आप भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है भजन के लिए, पर अगर नहीं भी कर रहे और कोई गलत काम तुमसे नहीं हो पा रहा, सीधे ऊपर जाओ। ये ध्यान रहे, काश्याम मरणान मुक्ते, लंगर लगाते हैं लोग और रोटियां और खीर और पूड़े और सब बांटते रहते हैं, प्याऊ लगाते हैं, जल भर के घड़ों में रख लिया है आने वालों को, ये पूछते हैं तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे कर्म क्या है, बोलो। जैसे पानी का प्याऊ लगा दिया, जो आए किसी भी जाति का हो, कोई भी कर्म करने वाला है, क्यों किया है, भूखा है रोट आके बैठ गया, रोटी लंगर लगाया, देख भगवान शंकर ने कहा ये तो संसारी लोग लगाते रहते हैं, प्रिय अपन तो मुक्ति का लंगर लगाएंगे, जो काशी आएगा उसी से ऊपर।
हारे हारे
हारे,
क्या मन बनाओ, काशी बाग में अंतिम शरीर छूटे, अपना भी बना हुआ है। वैसे शास्त्रों में दो बातें और लिखी है, अगर आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो चुकी है अथवा ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, फिर तुम काशी में मरो या चांडाल के घर में मरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुक्ति हो जाएगी। ये बात भी यहां लिखी, पर अगर प्रेमा भक्ति नहीं मिली अभी तक, अब ब्रह्म का पूर्ण बोध नहीं होने पाया है और मुक्ति चाहते हो, तो फिर क्या करना है भाई। हाँ, और मंदिर इतना अच्छा बन गया है, अभी फेसबुक में कल ये सुना रहे थे, हनु बोलो अनूठा मंदिर करके स्थान विलक्षण, उत्तरी भारत में कहीं ऐसा मंदिर नहीं, बनते बनते बन गया, वो भोलेनाथ ने बनाया, कर्ण कराने वाले करण करावन आप है आप। लेकिन आप कोई बता रहे थे कि अब लाइन लग रही है दर्शन करने वाले काशी, तो ये भगवान विश्वनाथ के द्वारा स्थापित है, मुक्ति का लंगर लगा दिया है उन्होंने, और ऐसे कोई देवी देवता नहीं, बड़े बड़े योगी सिद्ध साधक विभिन्न रूप धारण करके काशी में रहकर आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। पाशुपत व्रत के बारे आपको हमने बता ही दिया है कि 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो भगवान शंकर की आराधना कर लेगा वो सदा के लिए पशुत्व से पशु भाव से मुक्त हो जाए, कर्म के बंधन उसके जीवन में नहीं रहे, सब सब खत्म हो जाए। क्या समझे, नहीं कर सकते 12 तो 6 वर्ष कर लो, 6 नहीं करते 3 कर लो, मिनिमम 1 तो कम से कम हो ही जाए ना। सीधे कन्फर्म टिकट मिल जाएगी आपको बैकुंठ। अच्छा, तो काशी भगवान विश्वनाथ का हो गया। अब त्र्यंबकेश्वरम, आशिक हैं,
त्र्यंबकेश्वर।
ये कथा भी थोड़ा लंबी है, अब संक्षेप में कहनी पड़ेगा। ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां महर्षि गौतम, माता अहिल्या रहकर भजन कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, लगातार अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, सभी नदी तालाब पोखरे सूख गए, पेड़ पौधे सब सूख गए, जानवर खत्म हो गए, मनुष्य भी एक दूसरे को खा के मर रहे थे। कुछ थोड़े से जिनमें आत्मबल था, योग बल था, बचे हुए थे। गौतम जी ने 6 महीने लगातार वरुण की उपासना की। वरुण देवता जल के देवता हैं, और तुम्हारे सिंध प्रांत में वरुण देवता की बड़ी उपासना है। वो प्रकट हुए हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए हुए हैं, दिखते हैं। 6 महीने की आराधना के बाद जो वरुण देवता प्रकट हुए, वर मांगो जल चाहिए, लोग मर रहे हैं। अभी देवता चाहते हैं कुछ दिन और वर्षा न हो। जब ज्यादा पाप करते हैं तब कोई ना कोई भीषण विपत्ति आ जाती है, जैसे अभी आई, कितने लाख लोग मारे गए सारी दुनिया, और अभी भी वो विपत्ति टैली नहीं है, दबती है फिर उभर जाती। और ऐसे समय में तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी चाहिए, क्या समझा? और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जवान व्यक्ति जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वृद्धों की तो कोई बात ही नहीं। किसी वृद्ध को कोरोना हो जाए और वो बच जाए, वो ऊपर वाले की कृपा है, तो वृद्धों को तो ले जाते। बारूद के ढेर पर इस समय दुनिया खड़ी हुई है, और ये पाप का फल है। वरुण देवता ने कहा कि अभी वर्षा नहीं होगी, फिर मेरे भजन का फल क्या होगा? हम तुम्हारे लिए जल पैदा कर देते, यहां गड्ढा खोदो, जल आ गया। गौतमी वहां गड्ढा है, अभी भी है, जल भर गया, जैसे ट्यूबवेल से निकलता रहता है, ये कभी खाली नहीं होगा। यहां लाखों व्यक्ति स्नान करें, पिए, सिंचाई करो। गौतम जी ने उससे अनाज बोया, धान बोई, गेहूं बोए, फल फ्रूट वृक्षों के पौधे लगाए, बहुत प्रसन्न। अपने शिष्यों से कहा, बेटाओ जाओ, जहां जो भजनानंदी मिले उनको बोलो कि यहां आ जाओ, हर प्रकार की सुख सुविधा तुम्हें दी जाएगी। हमने कहा ना आपसे कि मंद बुद्धि व्यक्ति केवल परिवार तक सीमित रहता है, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बस आगे नहीं जाने। लेकिन जिनकी बुद्धि निर्मल होती है, वो कहते हैं सारा संसार हमारा कुटुंब है, सभी सुखी रहेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ करना होता है। परोपकाराय सताम विभूतयाः, सज्जनों का लक्षण क्या है? बोले परोपकार, सबको बुला लो, सैकड़ों परिवार आ गए, हजारों के सबकी झोपड़ियां बन गई हैं, यथेष्ट जल है, खाली होना नहीं, उसी से अनाज बोया गया है, हर प्रकार से सुखद हो गए। समय आता है कभी कभी, जो सहारा देते हैं लोग उन्हीं को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक कृतघ्न लोग कहलाते हैं। कहावत है ना कि कौआ जिस पत्तल में खाएगा ना उसी में छेक करता रहता, एक एक पत्ते को अलग अलग कर देता है। स्वभाव, स्वभाव को मिटना मुश्किल है। सर्प से पूछो कि तुमने किसी को काटा, वो तो मरा, लेकिन काटने से तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। नहीं समझ में आई बात? कुछ खाने पीने को मिला क्या? मार दिया। स्वभाव। अच्छा, चूहे से पूछो, तुम्हारी साड़ी सूट धोतियों को तर देता है, खाता नहीं है, खाली ज्यादा क्यों करते हो भाई? स्वभाव। इसी तरह कुछ कृतज्ञ लोग होते हैं कि जो सहारा देते हैं उन्हीं के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर देते। जल भरने के प्रसंग को लेकर कुछ महिलाओं में वाद विवाद हो गया। माता अहिल्या वहां गई, जो सही निर्णय था वो दे दिया उन्होंने, तो जिनके विपक्ष में निर्णय हुआ वो विरोधी हो गए, अपने पतियों को भड़काना शुरू किया। गौतम को बदनाम करना है, गौतम को यहां से निकालना है। अब बताओ, गौतम ने सबको बुलाया है, सबको सहारा दिया है, और क्या कह रहे हैं?
निकालना है।
पतियों ने समझाया लेकिन नहीं मानी। और देवियों के मंत्र ऐसे गुरु मंत्र हैं कि बड़े असर करते हैं देवियों पुरुषों पर। मां की बात कटे, बाप की कटे, गुरु की कटे, लेकिन श्रीमती की बात नहीं कटनी चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च। ज्यादातर लोग इसी तरह होते हैं। आखिर मजबूर होकर के उनके पतियों ने गणेश उपासना की, गणेश भगवान प्रकट हुए, वर मांगो, गौतम को यहां से निकालना। गणेश ने कहा, क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? जिसने तुम्हें जीवन दिया, अपराध क्या है गौतम का? प्रभु ये नहीं मानती, इनसे कुछ व्यवस्था नहीं। श्रीमतियों के कहने पर ये सारी स्थिति बनी। अंत में पछताना पड़ेगा, रोगे, क्षमा मांगोगे। निरपराधी पर किया गया अत्याचार अपराधी को मिटा देता। कुछ भी हो पर श्रीमतियों को खुश करना। गणेश बोले, हम मजबूर हैं, ठीक है, तुमने भजन किया है, कर देते हैं, लेकिन परिणाम इसका तुम्हारे लिए भयानक है। वृद्ध गाय बन गए, धान के खेत में धान बोई गई थी, जाके चरने लगे, और धान के दो चार झाड़ पतले पतले थे, हट हट किया, गिरे समा आशा। वो ब्राह्मण आ गए, उनकी औरतें आ गई, गौतम ने गोहत्या की है, गोहत्यारा है ये, इसको यहां से निकाला जाए। पत्थर मारने लगे, मिट्टी के ढेले मारने लगे, क्या क्या, मैंने मारा नहीं है, लेकिन आप सब कहते हो, मैं स्वीकार कर लेता हूं, पर इसका कोई प्रायश्चित भी तो होना चाहिए। तीन बार पृथ्वी की परिक्रमा करो पैदल, ये कहते हुए कि मैं गोहत्यारा हूं, लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। फिर यहां आके ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करना, फिर 1 करोड़ शिवलिंग बनाना, फिर गंगा लाना, शिव पार से नहलाना। गो हत्या बहुत बड़ा पाप मानते सनातन धर्म, और आज देश स्वतंत्र है, और 35,000 के करीब गाय बैल बछड़े सूर्योदय से पहले पहले कट जाते हैं प्रतिदिन। ये सरकारी आंकड़ा है, यह 35,000 से 40,000 गाय बैल बछड़े कट रहे। अब देखो यहां क्या लिखा है। उन लोगों ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ। क्यों? जहां गो हत्यारा रहता है, बुलाने पर भी वहां देवता नहीं आते, पूजा स्वीकार नहीं करते, छोड़। मजबूर होकर के उनको वहां से निकाल, 1 कोस दूरी पर जाके रोते रहते हैं, पूजा करते। तुमको पूजा नहीं करनी है, जो ब्रह्म गो हत्यारा होता है उसको यज्ञ दान यज्ञ पूजा करने का अधिकार नहीं होता। अब क्या करें? आकर उन्होंने प्रार्थना की भगवान शंकर, बहुत रोए। भगवान शंकर प्रकट हो गए, मैं पापी हूं, मुझे पवित्र किया जाए, मेरे पाप धोए जाए। तुम पापी नहीं हो, जिन्होंने तुम्हें पापी कहा है वो पापी हैं, और मैं इस त्रिशूल से उनको समाप्त करूं। नहीं नहीं, भोलेनाथ ऐसा नहीं करना। क्यों? अगर वो ऐसी परिस्थिति पैदा न करते, मैं व्याकुल होकर के आपको न पुकारता तो आपका दर्शन कैसे होता? इसीलिए उनको क्षमा कर दिया। उनको पता लग गया शंकर जा गए, दौड़े दौड़े आए, वो भी चरणों में गिर के रोने लगे। बाद में तो पछताना पड़ता है ना व्यक्ति को, लेकिन आवेश में कुछ भी कर लेता है। बहुत रोए, क्षमा की, बर मांगो, बस यही कि आप यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजे। गंगा मैया भी आ गई हैं, मां आपको भी यहां रहना। हमारा कुछ महत्व हो तो हम यहां रहें, नहीं तो क्या करेंगे? महत्व होगा, क्या होगा? जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे, 12 साल बाद आते हैं, एक महीने यहां कुंभ लगे, जितने देवी देवता हैं, जितने सिद्ध पीठ हैं, तीर्थ सब यही आ जाएगा। उन दिनों गंगा नहाओगे तो सामान्य फल होगा, और गोदावरी में नहा लोगे तो सब तीर्थों का फल मिल जाएगा। एक महीने वहीं रुकना होगा। गंगा की धारा गोदावरी के नाम से, इसलिए जब प्रभु राम धनवासी हुए यहां से चलते चलते वहीं पंचवटी में रुके हुए, गोदावरी का। अभी भी 5 बट हैं वहां, बट के 5 पेड़ अभी भी वहां लगे हुए, और गुफा बनी है जहां लक्ष्मण जी सीता जी को लेके जाके अंदर बैठे। यहां राम जी ने खरदूषण का वध किया था। चिन्ह है अभी, विधर्मियों ने बहुत कोशिश की कि राम का अवतार हुआ ही नहीं, पुल बंधा ही नहीं, सब काल्पनिक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किया और अंत में निर्णय दिया कि यहां पुल जरूर बंधा था। बोलो सियावर
रामचंद्र भगवान की जय।
पानी आज भी पत्थर वहां पानी में तैरते हैं, 20-25 किलो का पत्थर पानी में डालो ऊपर, और सारी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं। अब तो संसार बहुत छोटा हो गया है ना, समुद्र के किनारे तो कितने नगर बसे हुए, कहीं ऐसा नहीं। केवल रामेश्वरम ही एक ऐसा स्थान है जहां
पत्थर तैरते हैं।
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ये प्रभु की कृपा थी, पाषाण भी तर। अस्तु, इस तरह से त्र्यंबकेश्वर भगवान, उनका दर्शन श्रवण बंधन कल्याणकारी होता है। बोलिए शंकर भगवान की
जय।
बैद्यनाथ चिताभूमौ बैद्यनाथं च, ये बाबूलाल जी बहुत वर्षों तक जाते रहे गंगा जल चढ़ाने के लिए, उनकी कृपा तो हो गई ना, भजन भी हो गया, काशी में मन भी लगने लगा है। शिव का अर्चन पूजन जो है परम कल्याणकारी, भाग्यशाली है। गीता देवी ने श्रीमती गीता बब्बर, बेटा भी लायक है, बिटिया भी अच्छी है, जीवन में कुछ कमाई जो की उसका हिस्सा शिव पूजन में शिव कथा में लगाया है, बहुत बड़े पुण्य की बात है, सौभाग्य है। अपनी कमाई कुछ धर्म में लगाओ धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सिद्धते। महर्षि वेदव्यास दोनों भुजा उठा के कहते हैं अर्थ और काम की जरूरत है संसारियों को, पर अर्थ और काम की जड़ है धर्म। धर्म का सेवन करोगे अर्थ और काम की प्राप्ति अनायास होती रहे। धर्म का पालन नहीं करोगे रात दिन दौड़ोगे पेट भरने के लिए रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। अस्तु वैद्यनाथ भगवान शंकर कैलाश में डायमंड के शंकर के पूजन में लगे रहते हैं। भगवान शंकर भी शिव का पूजन करते हैं। भगवान शंकर के तीन रूप पहले हम बता चुके हैं, शिव, सदाशिव, रुद्र। कैलाश पर रुद्र रहते हैं भगवान शिव। अगर ये शिव काशी लंका चले चलते कितनी बढ़िया बात हो जाती, लेकिन सरलता से तो मिलेगा नहीं। तो उसने महाराज पूजन शुरू किया, यज्ञ किया और एक सिर काट के चढ़ा देता। पूजन करता है एक सिर दूसरा काट कर, नौ सिर काट के चढ़ाती। अंतिम दिन जब दसवां सिर काटने लगा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बर मांगो, वो अपने डायमंड के शंकर लंका ले जाना चाहते। वो तो राक्षसों की बस्ती है। कहूं महिष मानस धेनु खर अज खल इन साचर भक्षे, वहां तो कहीं मनुष्य का मांस पकड़ा, कहीं भैंसे का, कहीं गाय का, ना कर नहीं सकते। हमने आपको बताया ना कि जब आप भजन करोगे तो देवता आपका ऋणी हो जाता है, फिर वो कुछ देना चाहता है ताकि ऋण से मुक्त हो जाए। आपका पावर है, देखो एक इंसान भगवान को कर्जदार बना देता है। हनुमंत लाल जी ने कहा जब लंका से आए तो भगवान राम ने कहा, हनुमंत लाल मैंने बहुत विचार करके देखा, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उरण नहीं हो सकता। क्या कागज ले आओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूं, तुम मेरे साहूकार, मैं तुम्हारा ऋणिया। भगवान राम आज भी हनुमान जी के कर्जदार हैं। इसलिए लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को भावे और जन्म जन्म के
दुख विसराते।
जब तुम हनुमान जी की सेवा करोगे ना तो राम जी इनडायरेक्ट अपने तरफ से भेजते हैं, लगता है कि हनुमान जी दे रहे हैं। हनुमान जी नहीं देते, वो तो राम जी भेज देते हैं और ऋण उतर जाए। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं यद गोविंदे त्रिशुक्रोशो कृष्णा माम दूरवासिनो ऋण में तत्पुरवर्धम हृदयान नापसर्प। द्रौपदी ने गोविंद चीख मार के मुझे पुकारा, वो ऋण मेरे सिर पर चढ़ा हुआ कब उतरेगा। सौ कौरवों को मरवा के उनकी स्त्रियों के बाल खुलवा के और द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर बैठे जब देखूंगा तब सोचूंगा कि द्रौपदी का कर्जा में उतर गया। क्या तो इसलिए हम लोग कहा करते हैं और हम स्वयं अमल करते हैं, ऐसा नहीं खाली सुनाते हैं। भगवान की पूजा करो, किसी भी कामना को सामने न रखो। भगवत प्रीत्यर्थ क्या हम जो पूजन कर रहे हैं, जब पाठ कर रहे हैं वो भगवत, इसमें भगवान कर्जदार हो जाएंगे। और तुमने कुछ मांगने के लिए किया तो वो दे देंगे, तो कर्जा से उतर गए, वो ऋण नहीं है। तो भगवान को कर्जदार बनाना ये तुम्हारे हाथ की बात है, बस यही है कि तुम जो भजन करो वो भगवत प्रीत्यर्थ। बच्चों फिर देखो क्या, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे की दुकान चल जाए, बेटे का काम हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, ये जो मांग है ना, ये भजन को खत्म कर देती। और भजन करना है अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए बस। तो देख अच्छा बोलो, शंकर भगवान की। भगवान ने एक शर्त रख दी, लो भाई ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि जहां रख दोगे फिर उठेंगे नहीं। मैंने कैलाश उठा लिया, इतने शंकर ले जाने में मुझे कदम आश्चर्य। कावड़ लेके जाते ना ऐसे लोग, जमीन में नहीं रखते, कहीं डाल में टांग देंगे या साथी को पकड़ा देंगे, लघु शंका पे जाके हाथ पैर धोके इनको नीचे नहीं रखते। चले आ लेके, आधे रास्ते पेशाब आ गए, भगवान ही समझ लो ग्वाल वाल बन के खड़े हैं, भैया जरा इनको संभाल ले। देखा नहीं, बहुत वजनदार है, मैं नहीं उठा पाऊ। अरे भाई एक मिनट की बात है, थोड़ा संभाल ले, घर में विलंब होगा तो मैं रख दूंगा जो मैं। पेशाब को बैठा, महाराज बैठे ही रह गया, वो तो बंद ही नहीं हो रही धारा। अब वो ग्वाल कह रहा है उठाओ आओ जल्दी करो, ये बजे मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, रखते हैं। फिर रावण उठा, हाथ पैर धो के कुल्ला करके लगा उठाने, कैलाश को उठा लेने वाला शिवपिंडी को नहीं उठा, खाली लंका चला गया। वहां से लौट के मंदोदरी को साथ लेके आया है, विधि विधान से बहुत बड़ा पूजन किया है। क्या देवता ऋषि महर्षि सब आ गए हैं, भोलेनाथ अब यही आपका स्थायी निवास हो जाए, ताकि जगत में जीवों का कल्याण होता रहे, प्रार्थना की। बोलो शंकर भगवान की जय। वैद्यनाथ हो गए। अच्छा एक भजन हो जाए फिर आगे चलते हैं। गौतम सुनाओ भाई, वो है जा
बोले शंकर भगवान की जय। हरे जन जन का कल्याण करे मेरे शंभु बाबा,
जन जन का कल्याण करे मेरे शंभु बाबा,
जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा,
जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा,
हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा,
हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा,
हर जन जन का
Oh,
कहो
ज्यादा है इसलिए बीच में रोकना पड़ा। बोलो जल्दी बोल दो।
बोल सतगुरुदेव भगवान की हर हर। नौ दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज पूर्णाहुति होने जा रही है। इस कथा के यजमान जैसा आपने श्रवण किया श्रीमती गीता बब्बर बब्बर परिवार जो निमित्त बने मां शिव पुराण कथा के, जिस कथा का आनंद यहां बैठे हुए सभी भक्तों ने और उसके साथ ईश्वर टीवी चैनल पर और जय मां ललिता यूट्यूब चैनल पर भी सभी कथा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा के लिए पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ बब्बर परिवार को। श्री ललिता आश्रम ट्रस्ट की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। आगामी कथा के बारे में भी आपको सूचित कर दें कि कल से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है और उस कथा के लिए निमित्त बनाया है ठाकुर जी ने हमारे श्री परमानंद जी नंदवानी जो परिवार सीतियां उपस्थित हैं उनका स्वागत करते हैं। कल से उनकी ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद देवी भागवत का भी आयोजन होगा यहां। 22 तारीख तक ये कथा चलेगी देवी भागवत की। इन सभी कथाओं का प्रसारण पूर्व की भांति ईश्वर चैनल पर और जय मां ललिता टू पर आप श्रवण कर सकते हैं। ये कुछ दान राशि प्राप्त हुई है आज समापन बैठक पर। सर श्री राधेश्याम जी दिल्ली से 1100 रूपये, कृष्ण कुमार हांसी से 1100 रूपये, लवकुश दिल्ली से 1100 रूपये, चंद्रकांता जी हांसी से 1100 रूपये, ये 8000 रूपये प्राप्त हो रहे हैं। गिरजा शंकर पानीग्रही संबल उड़ीसा वालों की ओर से 8000 जी की जो राशि आ रही है, चैनल पर पट्टी चल रही है, आप देख रहे हैं कि एक दिन की गौ सेवा की राशि 11000 रूपये और एक दिन का भंडारे की जो राशि है सेवा राशि वो 8000 रूपये है। तो ये 8000 रूपये भंडारे के लिए अन्न क्षेत्र के लिए प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगामी कथा भाग के लिए पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए
रुद्राक्ष की माला वितरित की जा रही है। जो धारण कर सकें वही लें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत महत्व है शास्त्र में रुद्राक्ष धारण करने का। लोग तो अंगूठी में मड़वा लेते हैं और कई संतों को तो देखा अपनी जटाओं में बालों में भी जान लेते हैं। सुना जाता है कि एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते के गले में माला डाल रखी थी और जब उसकी मृत्यु हुई तो कुत्ता भी शिवलोक जा रहा देवता पुष्प वर्षा। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना महत्व की बात है और ये बब्बर परिवार ने बड़ी उदारता से कथा श्रवण की है। प्रेरक हैं, दूसरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर कुछ कमाया है, बेटा तो हमेशा कुछ करता ही रहता है। विकास को तो हम बहुत समय से देखते जानते हैं। अपना शिष्य ही है। माता ने भी अपना स्वरूप दिखाया, अध्यापिका रही, रिटायरमेंट के बाद जो मिला होगा उसमें से उन्होंने कथा का मन बना लिया, 3-4 लाख रुपए का अनुदान उनका रहा विभिन्न कार्यों में। ये मालाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, धारण करेंगे अच्छा रहेगा, अच्छा ध्यान रख, ले जाके कहीं रख नहीं देना है। बोलिए शंकर भगवान की। नागेशम दारुका बने, दसवें हैं नागेश, द्वारिका, द्वारिका और भेंट द्वारिका दो हैं और दोनों के बीच में नागेश। आहुक और आहुका, ये दोनों हैं। आहुका पराम्बा भगवती की परम भक्ता है, वर प्राप्त किया है उसने, 16 योजन की जमीन कहीं से उठा के मैं कहीं भी रख सकती हूं। जैसे हनुमंतलाल जी द्रोणागिरि पर्वत ले आए, कहीं की जमीन उठाते हैं रख देते, लेकिन स्वभाव बदलता नहीं। जैसा हमने आपसे कहा ना कि स्वभाव, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना इससे बड़ी शूरवीरता कुछ है ही नहीं शास्त्रों में। स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव नहीं बदलता। ध्यान दें, इतना बड़ा वर प्राप्त कर लिया है, पराम्बा की उपासिका भी है, लेकिन यात्रियों को सताते हैं, उनका धन छोड़ा देते हैं, कि विरोध करें तो मार देते हैं। इसके बाद अंत तो गत्वा यात्री बहुत दुखी हुए हैं। एक औरब नाम के ऋषि वहां तप कर रहे थे, देवताओं ने उनसे जाके प्रार्थना की, उन्होंने कहा आज के बाद अगर वो यहां किसी को मारेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। देवताओं को पता लग गया, उनको भी पता लग गया, अब हमने किसी को यहां मारा तो हम ही को मार देंगे। वो 16 योजन की भूमि उठा के समुद्र में टापू जैसा बना के मारा, लेकिन आदत छूटी नहीं ना, आदत छूटती नहीं है, ये बड़ी समस्या है। क्रोधी व्यक्ति अनेक बार संकल्प करता है क्रोध नहीं करूंगा, तो जरा सा प्रसंग कुछ आया क्रोध आ जाएगा। लोभी लोभ के लिए भी प्रसंग करता है, लेकिन बिना, शराबी अनेक बार संकल्प करता अब नहीं पीऊंगा, लेकिन बोतल दिखी तो विजय, स्वभाव पर विजय बहुत बड़ी। एक सुप्रिय नाम के वैश्य थे, सुप्रिय वैश्य, परम शिव भक्त थे वो, गले में माला, हाथों में माला, कमर में माला, भस्मी लगाए हुए और भोलेनाथ का कीर्तन करते। जब प्लेन ट्रेन नहीं थी पहले तो समुद्र के रास्ते से दूर दूसरे देशों में जाके लोग व्यापार करते, बड़ी बड़ी नौकाएं, आज भी नौकाएं हैं बड़ी, लेकिन उसका एक संकल्प था, वही व्यक्ति मेरी नौका में मेरे साथ चलेगा जो शंकर का भक्त हो, दूसरे का नहीं लेगा, सात्विक जीवन। आपको हमको भी इसी तरह विचार करना चाहिए, उन्हीं को अपने फ्रेंड बनाओ, उन्हीं को मित्र बनाओ, उनको साथी बनाओ जिनके मुख से प्रभु का नाम निकलता हो, जो भगवत चर्चा करते हो, चाहे जिसको अपना बना लिया। कुसंग का असर बहुत जल्दी होता है, सत्संग से। अब नौका चल रही है और हर हर महादेव शंभो कीर्तन चलता है, नौका भी चलती रहती है, कीर्तन भी करते है। पूजन पाठ सब सब शिव भक्त सबके मस्तक भस्मी लगी हुई है, हाथों में गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, वो मस्ती से कीर्तन करते है। वो नागेश और आहुकान है, उनको अपहरण कर उनका धन छीन ली और जेल में डाल दिया। सुप्रिय का भी संकल्प था बिना शिवार्चन किए भोजन नहीं कर, वो भी जेल के अंदर ही पूजन करता है। उसको पता लगा, तलवार लेके आ गया, मारने की कोशिश की, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले शंकर
भगवान की जय।
मार दिया, नागेश के रूप में स्थापित हुए। बहुत पहले हम गए एक छोटी सी मड़िया में शिवलिंग रखे हुए थे, लगता था कि ज्योतिर शिवलिंग और क्या सीरीज वाला कौन था वो
गुलशन
हाँ
गुलशन कुमार
गुलशन वो वहां गया शंकर भक्त इतने विशाल ज्योतिर इतने छोटे चेक निकाला 5 करोड़ लिख के दे दे 5,000 नहीं 5 लाख नहीं
5 करोड़
क्या विशाल मंदिर बना है। फिर वो साकार विग्रह भी बहुत बढ़िया शंकर जी का, वो तो मारा गया बेचारा, उसका चित्र वहां लगा हो, पहले उसका दर्शन हो बाद में शंकर जी। कहने का मतलब ये कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करके मरो कि बाद में भी लोग तुम्हारी याद तो करते रहे, स्मरण तो करते रहे। जो कहता अब काशी में एक शिवलिंग की स्थापना अनेक पितरों का उद्धार है, और 150-200 शिवलिंग वहां रखे हैं, स्फटक के भी हैं, दूसरे हैं। अब लोगों की मांग बढ़ती जा रही है, अब जगह नहीं रही थोड़ी बहुत, क्या जो कहीं भी शिवलिंग स्थापित कर दो उसका कल्याण ही कल्याण है। काशी की तो खैर बात ही अलग है, काशी की स्थिति तो यह है, पहले कई बार सुना चुके हैं, 1 क्विंटल चावल लेके जाओ और एक एक दाना एक एक संकल्प पर रखो, चावल खत्म पूरे संकल्प पर नहीं चढ़ पाए। काशी शिवमयी है, वहां दूसरे कोई नारे नहीं, बस हर हर महादेव। जैसे वृंदावन में राधे राधे, इसी तरह काशी में हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूसरी बात, मुक्ति धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जो कथा भी सुन लेते हैं उन पर भी भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। ग्यारहवें है रामेश्वरम और बारहवें है घोषमेश। संक्षेप में कह दें, पुल बन रहा है लंका जाने के लिए, प्रभु राम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, अचानक प्यास लगी है, हनुमंतलाल जी को संकेत मिला और जल ले आए, हाथ में ले लिया। अरे हनुमंतलाल, अभी तो मैंने शिवार्चन नहीं किया, शिव का पूजन नहीं किया, प्रभु जल से क्या होता? नहीं, क्या वर्णमाला में है पहले का, फिर है खा, फिर है गा, उसके बाद है घा। मालूम है नहीं मालूम? हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या है? का का मतलब ब्रह्म, परमात्मा का पहले चिंतन करो, फिर खा, पहले का फिर खा, और जिसने पेट भरने को रोटी दी उसका नाम गा, तो फिर असली घर चला जा। का खा गा
घा
घा, तो तत्काल पिंडी बनाई गई है, भगवान शंकर ने षोडशोपचार से पूजन किया है, परिक्रमा की है, और शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर भी नाचने, भगवान राम भी नाचने लगे थोड़ा, और उनका कदम उठाना था, लक्ष्मण भी खड़े हो गए, हनुमंत लाल जी सारे वानर देवता पुष्प बरसा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं,
हरे हरे श्याम रामचंद्र भगवान की।
बहुत बढ़िया नृत्य हुआ, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बरम ब्रोही बरमागो, प्रभो रावण आपका भक्त है और जो आपके भक्त होते हैं उनको जल्दी मारा नहीं जा सकता, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। एक दधीची ऋषि दधीची, उन्होंने शिव का अर्चन किया, भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया, उन्होंने तीन बार मांगे थे मेरी अस्थियां वज्र की हो जाएं, क्या मुझे कोई पराजित न कर सके और मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, यही शिव पुराण में लिखा। तीन बार अस्थियां वज्र की हो जाएं, किसी देवता से मैं पराजित नहीं हूं, मनुष्यों की तो बातें देवता हूं, भगवान विष्णु भी लड़े हैं बाद में, पराजित हो गए। भगवान शंकर के उपासक जो होते हैं उनका तेज बहुत बढ़ता, महाभारत पर विजय प्राप्त करनी है अर्जुन शिवार्चन करो, पहले जाके तप करो। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, प्रभु आपके होते, अरे भाई या तो मुझसे सलाह मत लो, पर मैं जो कहता हूं करो, अगर महाभारत में विजय प्राप्त करना है तो शिवार्चन करो। प्रसंग है इसी, काफी लंबा है, और जब भगवत दर्शन किया, पाशुपतास्त्र मिला, लौट के आए तो भाइयों ने कहा, अर्जुन ऐसा तेज तो हमने पहले तेरे मुख में शरीर में कभी देखा ही नहीं, ये तेज कैसे आ गया तेरे? शिवार्चन किया हुआ। द्रौपदी ने कहा कि मैंने भी पहली बार आपका इतना तेज देखा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से, पार विलक्षण भगवान शंकर पर अब तुम्हारी निश्चित विजय हो जाएगी। क्या शिव की आराधना तो सब देवता करते हैं। अस्तु, भगवान शंकर ने कहा अब रावण को मार सकते हो क्योंकि वो दुराचारी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो दुराचारी हो गया है इसलिए मार दो। तब शिवलिंग की स्थापना की है भगवान शंकर ने और कहा है जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, जे
रामेश्वर
मम कृत से तुझे दर्शन करी हैं, ते तन तज मम लोक से धरी हैं, और जो गंगा जल आन चढ़ाई हैं सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाएगा साजुज मुक्ति पाएगा, ध्यान दो जरा। और अभी पुल का अवशेष है थोड़ा बहुत तो। मम कृत से तुझे दर्शन करी हैं, ते तन तज मम
लोक लोक।
ग्यारह में जो उत्तर लेंगे, बारह में घोषमेश हैं, समय तो हो गया है। उपमन्यु नाम के एक बालक थे, मां के लिए दूध के लिए रोए हैं, माँ ने जौ पीस करके पानी में लग दे दिया। बहुत सारी कथाएं हैं ना, तो रोए हो उन्होंने कहा तो अच्छी दूध नहीं है, तो हमारे साथ ही ऐसा अच्छा दूध पी रहे हैं हमें। बेटा पहले जन्म में जो दिया जाता है वो इस जन्म में मिलता है। ये श्लोक यहां लिखा हुआ है, पूर्व जन्मानि च यद्दत्तम्, पूर्व जन्मानि च यद्दत्तम् शिव मुद्दिश्य वै पुनः तदेव लभ्यते नान्यत् शिव मुद्दिश्य वै शत। ये श्लोक लिखा है, बेटा पूर्व जन्म में जो दिया जाता है वो इस जन्म में मिलता है। हमने पहले दिया नहीं होगा तो क्या हमारा सारा जीवन ऐसे बीतेगा? नहीं बेटा, शिवार्चन कर ले। कथाएं लंबी हैं, उन्होंने किया है और भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने इस तरफ देख दूध का समुद्र भरा हुआ है, गन्ने का समुद्र भरा है, दही का भरा हुआ, सैकड़ों समुद्र मेरा अर्चन किया है तुमने। ये अलग से कथा है घोषमेश से। घोषमेश की कथा बड़ी करुणापूर्ण है, शिक्षा प्रद भी है, अंतिम है। ध्यान से सुने, एक सुदेहा नाम के ब्राह्मण, सुधर्मा नाम के ब्राह्मण, सुदेहा नाम की पत्नी, दोनों शंकर भक्त हैं, बहुत कुछ दान धर्म किया है लेकिन संतान नहीं हुई। पत्नी ने आग्रह किया कि दूसरा विवाह करा लें आप, वंश परंपरा चलनी चाहिए, नहीं तो पितरों को पिंडा पानी कौन देगा? दो भाई तीन भाई हो, एक के ना भी हो तो भी चलेगा, दूसरों के हो गए वो तो इतने रहेंगे, पर एक ही हो तो फिर क्या होगा? आप दूसरी शादी करा लें। नहीं देवी, विवाह एक ही ठीक होता है, जहां दो होती हैं आपस में लड़ती हैं, समस्याएं आती हैं, शादी एक। आज सरकार ने संविधान बना रखा है हिंदू शादी एक, मुसलमान शादी चार। क्या एक हिंदू नेता मुस्लिम लड़की से प्यार कर बैठा या हिंदू से किया दूसरी शादी करनी थी तो उसको मुसलमान बनना पड़ा। भले मुस्लिम बन के तुम दूसरी शादी कर सकते हो, पर कैसे अंधे कानून है ये। देश एक है, संविधान एक होना चाहिए। आखिर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है प्रयागराज में, इलाहाबाद में देश के लिए खतरा है। मुसलमान 20 बच्चे पैदा कर सकता है, हिंदू 2 करेगा, एक ही शादी करेगा, वो 4 करेंगे। अब ये भी सुना अखबार में या टीवी में था कि मुसलमानों की तरफ से ऑफर है कि 4 से जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको 1500 रुपया वजीफा हर महीने दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करे हो, हर महीने 1500 रुपया उनको दिया जाएगा गुजारे के लिए। इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। और हिंदू अल्पमत में हो जाएंगे, सदा के लिए देश हमारा हो जाएगा। और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान छोड़ के दूसरा कोई प्रांत देश ही नहीं है। मुसलमानों के 30 या 50 या 55 कितने देश हैं, और ईसाइयों के भी इतने ही देश हैं, लेकिन हिंदू को एक का ही है। और हिंदू सोया हुआ है आराम से। सोचना है हम अस्तु। अंत तो गत्वा पत्नी ने कहा कि मेरी छोटी बहन घुसमा है, वो शंकर की परम भक्ता है, आपकी साली है, आप जानते ही हैं, उससे शादी करा लेंगे, हम दोनों सगी बहनें हैं, मिलकर प्यार से रह जाएंगे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। आखिर मजबूर होकर के ब्राह्मण ने साली के साथ शादी करा। घुसमा इतना मीठा बोलती है, इतने प्यार से बात करती है कि एक बार जो मिल ले वो तो सदा के लिए उसके बन जाते। शादी क्या हुई महाराज, जय जयकार हो रही है ब्राह्मण की। दूसरी शादी ज्यादा सफल नहीं होती, लेकिन ये तो आपके घर में लक्ष्मी आ गई। दिन भर काम भी करती है घर को, और शिव 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 जपती रहती है। रात में मिट्टी फुले देती है, सुबह 3:30 बजे उठना, 101 शिवलिंग बनाती है, एक बड़े और छोटे, उनका पूजन करती है। पार्थिव पूजन की महिमा बहुत ज्यादा है, खासकर महिलाओं के लिए। तो 3 घंटे 3.5 घंटे उसको पूजा में समय लगता था। साल बाद एक बच्चा हो गया उसके। अब ब्राह्मण देवता का उसी से कुछ ज्यादा प्यार हो गया, मोहल्ले की भी महिलाएं ज्यादा उसी के पास बैठती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, दीरक रोगी लालची कटवच लोलुप लोग, तुलसी प्राण समान तो हो निरादर। जो बचपन से बीमार रह रहा हो, लालची हो, कड़वा बोलने वाला हो, बोले प्राण समान हो तब भी निरादर के पात्र हो जाते। अपनी वाणी को संभालना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। अब जिस बहन ने शादी कराई थी ना, उसी के मन में ईर्ष्या हो गई, इस बच्चे को मार दिया जाए बराबर प्यार हो जाए। समय नहीं मिल सका, पहले बाल विवाह होते थे 8-10 वर्ष की अवस्था में विवाह, बहू आ गई और जय जयकार हो रही है, खुशियां मनाई जा रही। अब इसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, अब तो इस बालक को मारेंगे, क्योंकि बच्चे हैं अभी तो, बहू रानी तो सास के पास है, बच्चा अकेला है, 8-10 वर्ष के बच्चे हैं ना। अरे वर्ष उसने उठाया गंडासा, सुदेहा ने और सोते बच्चे के गर्दन में वार किया, दोनों हाथों में किया, पैरों में किया, एक बोरे में भर करके घुष्मा जिस तालाब में प्रतिदिन पार्थिव पूजन करके प्रवाहित करने जाते उसी से फेंक करके आए। घुष्मा उठी है, नित्य का नियम है, पूजन में बैठ गए। इतने में शोर मच गया, किसी हत्यारे ने मार दिया। परिवार तो रो ही रहा था, मोहल्ले के लोग भी रोने लगे। वो बहू 9-10 साल की और रोती रोती सास के पास आई, मां मेरा सिंदूर चला गया, आपकी गोद सोनी हो गई, आपके बेटे को किसी ने मार दिया। और तड़ घुसवा के एक आंसू नहीं आए। बेटी, भोलेनाथ ने दिया है, वही ले गए हम। उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकते। तो रो नहीं, रोना ही है तो वहां जा। जब तक मेरी पीजा पूजा पूरी नहीं होगी मैं उठूंगी नहीं यहां से। हम कहा करते हैं कि मोबाइल वहां रखा हो, यहां पूजन में बैठी देवी, घंटी बजी, पूजा छोड़ के। दूसरी ओर ये स्थिति है, एक ही पुत्र है, अभी शादी हुई है, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, शोर मचा है, वो अपने पूजा में लगे। पूरी पूजा विधि विधान से करके उठा के शंकर जी को प्रवाहित करने जाना है। पहले उस कमरे में गई, खाट खून से भरी हुई थी, कपड़े में। अच्छा भोलेनाथ, शिव पुराण में एक श्लोक है कि मंगला मंगलम यदि यद करो तीसरे ही में सर्वम तन मंगलाये। विश्वास का लक्षण क्या है? बोले जीवन में मंगल हो या अमंगल हो, मान मिले या अपमान मिले, दुख मिले या सुख मिले, सब में एक समान रहे, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, यही सत्यता का लक्षण होता है। पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। और सब देख के भी रोई नहीं, आंसू नहीं भाए, ठीक है प्रभु जो किया ठीक है। शिव शिव कहती हुई जब वहां पहुंची तालाब के पास, देखा मेड़ पर बेटा खड़ा हुआ। बोलो शंकर भगवान की। उसने दौड़ के प्रणाम किया, अरे बेटा तुझे तो किसी ने मार दिया था, तो कैसे आ गया? मां, मेरी मृत्यु सुनकर भी जिनकी पूजा आपने नहीं छोड़ी, विलाप नहीं किया, वही भगवान शंकर आए थे, मुझे जिला गए और बता गए कि तेरी बड़ी मां ने तुझे मारा हुआ। अब तो भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, उसको मारूंगा। प्रकट हुए भोलेनाथ, नहीं प्रभु उसको नहीं मार। अपकार करने वाले का जो उपकार करते हैं उनके दर्शन मात्र से पाप कट जाया करते। अपकार करश्चैव उपकारम करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण पापम प्रलयताम भृजेत। ये श्लोक लिखा है, उसे नहीं मार। मारना ही है तो उसकी दुष्ट बुद्धि मार के मेरी जैसी बुद्धि दे दो, तो हम दोनों बहनें मिलकर आपका बहन। पार्वती अम्बाई प्रकट हो गई, धन है घुष्मा, धन है तेरा जीवन, तेरे विचार भर मांग ले, बस यही चाहती हूं कि जब पार्थिव सिराने आओ तो आपका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे मिला करे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने कहा, घुष्मा सौ पीढ़ियों तक तेरे कुल में मेरे भक्त पैदा होते थे, भजन चले पूजन चले सब मौज 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 हो जाएगी। इस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा आपने सुनी, परमात्मा कल्याण करें। अब अंतिम श्लोक आपको सुना देते हैं, गौतम बोलेंगे ना। एतच्छ्योपुराणस्य श्रोतु भक्तुश्च सर्वदा, श्रोतु भक्तुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः सांबा, शंकरोतु सशंकरः, सात बार शिव पुराण श्रद्धा से पढ़ ले या सुन ले, उसे एक न एक दिन भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।
हर हर।
अंतिम प्रार्थना की गई है कि हे भोलेनाथ, जिन्होंने ये कथा सुनाई और जिन्होंने सुनी, गणपति और कार्तिकेय के सहित अम्बा पार्वती और भगवान शंकर हमारा सबका कल्याण करें, बस यही प्रार्थना करके विराम दिया जाता। ओम शांति शांति शांति।
हर हर सतगुरुदेव भगवान की।
मालाएं आपको प्राप्त हो गई है प्रसाद के रूप में, भक्ति भी प्रसाद मिलेगा, आरती हो जाए और उसके बाद फिर आगे बोलो।
ओम ज्वालावालिन्येन महासर्वोपचरणार्थगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा चन्द्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
ओम जय शिवाय ओंकार भोले
ब्रह्मचारी भोले नाथ।